जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं करोड़ों आंगनों में है अंधेरा अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला समझ ले है अधूरा काम तेरा जगत उद्धार में अभी देर है अभी तो दुनिया में अंधेर है सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते रहना।
ओम शांति। कश्मीर में एक महिला संत कवि हुई थी जिसका नाम था लल्लेश्वरी देवी। उसके जो गीत है वाक कहा जाते हैं जिनको कश्मीर की संस्कृति में इतने घुल मिल गए हैं कि बहुत सारी कहावतें मुहावरे लोकोक्तियां वहां से जन्म ली है जिन्होंने। उसके जीवन में वर्णन है जब वो बहुत छोटी थी 12-13 वर्ष की तब उसका विवाह हो गया और वो शिव भक्त थी दिन रात शिव की भक्ति करने वाली और उसका पति और उसकी जो सास थी वो बहुत क्रूर थे उसे बहुत सताते थे इतना सताते थे उस पर कलंक लगाते थे बद किरदार होने के। और दिखाया है जब एक बार पति ने उसकी सब समाज के सामने बहुत उसका अपमान किया जब वो 26 वर्ष की थी तब उसने सोचा मुझे इस घर में नहीं रहना है और वो निकल पड़ी और रास्ते में गलियों में शिव का गुणगान करते घूमती रहती वापस फिर कभी नहीं घर लौटी। लोग उसका उपहास करते उसकी निंदा करते कोई उस पर कीचड़ डालता कोई कुछ पर उसमें से भी कुछ कुछ लोगों ने उसको समझा और जो उसके भक्त बने उनको लगा कि इसमें कुछ और है कुछ शक्ति है। एक बार एक दुकानदार भक्त ने देखा कि किसी ने उसके पर कीचड़ फेंक दिया है। वो उसके पास जाता है, कहता है, तुम यहाँ क्यों रहती हो? यहाँ से दूर कहीं चले जाओ इन लोगों से, ये लोग तुझे नहीं समझते, अपमान करते हैं तुम्हारा। वो कहती है, मुझे तुम दो कपड़े दो, टुकड़े दो कपड़ों के। एक कपड़ा वो इस कंधे पर डालती है और एक कंधा इस कंधे पर, और घूमने निकलती है। जब भी कोई उसे गाली देता, इधर का जो कपड़ा है उस पर वो गांठ बांधती। जब भी उसकी कोई निंदा करता, इधर गांठ बांधती, और जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता, इधर गांठ बांधती। शाम को वो लौटती है उसी दुकानदार भक्त के पास और कहती है, ये देखो दो टुकड़े। सुबह नेचुरली जिस टुकड़े पर गांठे ज्यादा थी वो टुकड़े थे, वो कपड़ा था जिसमें उसको बहुत गालियां दी, उसमें बहुत सारी गांठे थी, और कुछ लोगों ने उसकी स्तुति की थी, वो भी उसने वहां पर भी गांठे बांधी थी, वो गांठे बहुत कम थी। उसने उस दुकानदार को कहा, आप तराजू लेके आओ और दोनों कपड़ों का वजन करो कितना है, और वजन दोनों का समान था। चाहे किसी ने गालियां दी वो वाला कपड़ा, और दूसरी तरफ वो कपड़ा जिसमें लोगों ने स्तुति की। और उसने कहा, देखो ये जो स्तुति और निंदा है ये केवल बाहर बाहर है, अंदर जो महत्वपूर्ण है वो मूल है, और यही नियम ब्रह्मा कुमारी जीवन का भी है। जब से ब्रह्मा कुमारी बने तब से एक नियम सिखाया गया है, और वही आज की क्लास का टॉपिक है, सिक सिक, झुक झुक और मरमर। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात सूरज रे जलते रहना। किसी आदर्श की रक्षा हेतु तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, सेवा केंद्र अर्थात अग्नि का भवन है, जहां पर आग की लपटे है। तू जल जल रे किरने फैला, तुझे किरने फैलानी है, परंतु उसके पहले तुझे खुद जलना है, दिन रात जलना है, एक एक पल जलना होगा, क्योंकि विश्व को तुम्हें रोशनी देनी है। सूरज रे जलते रहना। लिखा है तेरे भाग में यही कि तेरा जीवन रहेगा सदा आग में, यही तेरा भाग है, यही तेरे जीवन में लिखा है कि तेरा जीवन सदा ही कहाँ रहेगा, आग में जलता रहेगा। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ओखली है, ओखली में सर्दियां तो मुसलों से क्या डर, ये यज्ञ ओखली है, ये ब्राह्मण परिवार भी ओखली है, ये सेवा केंद्र ओखली है, मधुबन एक ओखली है। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात पब्लिक लाइफ, और इसमें अगर सर्दियां है तो बहुत मुसल का सामना करना पड़ेगा। सूरज रे जलते रहना। तो जल जल अपनी किरणें फैला, जितना ज्यादा जलेगा उतनी किरणें फैलेगी। अंग्रेजी में कहावत है कि यदि तुझे सूरज की तरह सारे संसार को प्रकाशित करना है तो पहले खुद जलना होगा। If you want to shine like the sun, you must first burn like the sun. तो इस ब्रह्मा कुमारी जीवन का नियम है, सिक सिक, झुक झुक और मरमर। तीन शब्द है। सबसे पहला लेते हैं सिक सिक, पांच चीजों से हमें सीखना है। झुक झुक पांच चीजों में झुकना है। सिक सिक झुक झुक और मर मर पांच चीजों से मरना है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात शिक्षक, और उस शिक्षक को सिखाने के लिए बहुत सारे निराकारी शिक्षक, साकारी शिक्षक आते रहेंगे, और इस जीवन में सबसे पहले हमें जिनसे सीखना है वो है परिस्थितियाँ। पांच बातों से सीखना है, पेपर से सीखना है, विघ्नों से सीखना है। जो जो विघ्न इस जीवन में आया, कलंक लगे पवित्रता पर, सीखना है उससे। विघ्नकारी आत्माओं ने बाधा उत्पन्न की, सीखना है उससे। झूठे आरोप लगाए गए, हम निर्दोष थे, सीखना है उससे। परिस्थितियां जितना सिखाती है उतनी कोई किताब संसार की नहीं सिखा सकती। मुरलियों से हमने कम सीखा, जीवन से ज्यादा। वास्तव में मुरली में क्या है, ये जीवन में जब परिस्थिति आई तब पता चला। तब तक तो वो केवल थियरी थी बस, और कुछ नहीं। इसलिए चुनौतियों से भागकर कहीं दूर नहीं निकल जाना है। पलायन नहीं है ब्रह्मा कुमारी जीवन, अर्थात सामना करना है हर संकट का। यही भगवान की लीला है। तू जल जल और ये संकट सहन कर ले, सूरज रे तुझे जलना होगा। जब तक हर आंगन में उजियारा ना है, तेरा काम ये अधूरा है, सूरज रे चलते रहना। तो जो भी जीवन में हो रहा है, ऑप्शन ए कंप्लेंट करना, दुख व्यक्त करना, प्रश्न से भर जाना, उदास हो जाना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अंग्रेजी में एक किताब है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा। बाकी सब लोग ठीक है, बाकी सब लोग सुखी है, बाकी सब लोगों के साथ तो अच्छा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, मैंने इससे बहुत सीखा। हम एक सेवा केंद्र में गए थे, वहां पर दो ही स्टूडेंट थे। हमने उस बहन से पूछा, यहां दो ही स्टूडेंट है? उसने कहा हाँ। क्यों? वो कोकण एरिया था, वहां पर लोग मच्छी खाते हैं, उनको पता है ब्रह्मा कुमारीज में जाना अर्थात वो सब छोड़ना पड़ेगा। बहन ने कहा, यहाँ हम सेवाएं बहुत करती है परंतु स्टूडेंट रेगुलर नहीं होते। पर उसने एक ऐसी बात कह दी जो अभी तक हमको याद है। उसने कहा, पहले मैं एक रिट्रीट सेंटर पर थी जहां बहुत सेवाएं थी, बहुत बिजी रहती थी, अभी 10 साल से यहां हूं। और उसने एक बात कही, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। बड़ा शक्तिशाली वाक्य है, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। जो है वो है, अब वो अपना सारा समय अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन, चिंतन, और उसकी स्थिति हमने देखी कितनी स्ट्रांग थी। और सारे दिन भर ऐसा नहीं कि सेवा नहीं करते, सेवा करते। उनके साथ हमें भी एक जगह लेके गए थे किसी जेल में, कैदियों की सेवा करने के लिए। सेवाएं कर रही है, करती है, परंतु जो परिस्थिति सामने है, उसने कहा, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। नो कंप्लेंट्स। सबसे पहली बात जो हमें सिखाती है वो है परिस्थितियाँ, विघ्न, समस्याएं, मुश्किलातें, पेपर्स, परीक्षाएं, आजमाइशें। जो सूरमा होता है उसकी आजमाइश ली जाती है, टेस्ट किया जाता है उसको। अभी लास्ट संडे मुरली थी, सेनापति बाप किसको देख रहे, शस्त्र को देख रहे और महावीर कौन कौन है उसको देख रहा है। वो जो आत्माएं हैं, विनाशकारी आत्माएं, उनके शस्त्र सूक्ष्म होते हैं, तीव्र गति के होते हैं, एक स्थान पर बैठकर दूसरी किरण रेस की विनाश की फैलाते हैं। तुम सूक्ष्म हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या है, ज्ञान तुम्हारी शक्ति है। याद की रूहानी याद की किरणों से कितनी आत्माओं को टच किया आज सेनापति बाप देख रहे हैं। अभी भी मुरली चली थी ना, ज्ञान को शक्ति के रूप में नंबर वार क्यों है, क्योंकि कोई है जिन्होंने ज्ञान को पॉइंट के रूप में धारण किया है और किसी ने उसको शक्ति के रूप में धारण किया है, शस्त्र के रूप में धारण किया है। यही अंतर है, इसीलिए नंबर वार हो गया है। समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अव्यक्त मुरली, 21 जनवरी 1969, इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्त वाणी। ज्ञान तुमने बहुत सुना, ज्ञान समय पर याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। लास्ट संडे की मुरली, अब नहीं कब नहीं, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, एक रूहानी जागृति आएगी, दो उमंग उत्साह रहेगा, तीन और जो साधारण संकल्प है वो सारे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। लास्ट संडे मुरली चली थी, सीखना है परिस्थितियों से। एकांत में बैठ के ब्रह्मा कुमारी जीवन का पहला दिन और आज का दिन क्या क्या सीखा, क्या क्या हुआ। एकांत में बैठकर किसी अमृत वेला साक्षी होकर ये सारे दृश्य देखने हैं, स्क्रीन पर कौन कौन से सीन आए और खुशी व्यक्त करनी है कि वो सीन भी चला गया, वो आया था वो भी चला गया। कोई भी सीन परमानेंट नहीं है, आया और गया। सारी दुनिया विरोध में हो गई थी, वो भी चला गया। इतना सब कुछ सहन कर लिया, अब और क्या बाकी है। दूसरा सीखना है व्यक्तियों से, उन सभी व्यक्तियों से जिन्होंने निंदा की, ग्लानी की, अपमान किया। उन्होंने बहुत सिखाया है, स्तुति करने वालों ने कम सिखाया, टॉन्ट करने वालों ने बहुत सिखाया, कमेंट्स करने वालों ने बहुत सिखाया। व्यक्तियों से सीखना है। तीसरा, स्थान से सीखना है। हर नए स्थान जहां हम गए, कोई ना कोई सबक उस स्थान ने सिखाया। मधुबन गए, वहां भी सीखे, बहुत कुछ सीखे। हर नया स्थान कुछ ना कुछ सिखा के गया है। नई परिस्थितियां उस स्थान पर आई, नए लोग वहां मिले, सुख सुविधाओं में जो कमी थी उसको भी पार किया। दादी जान की लंदन में थी 4 साल शुरुआत में, जो सनली थी वही रात में बिस्तर बन जाता था। कैसी परिस्थितियां थी, कहा जाता है जो साड़ी पहन कर गई थी वही साड़ी जब लौट कर आई वही थी। कैसे वो 4 साल बीते वहां पर, कितनी कमियों में। दादी अनुभव सुनाती है, मुंबई में थी, आधी यात्रा बस से और आधी पैदल, पैसे बचाने के लिए। अभी जो दादी को स्थिति प्राप्त है और जो सम्मान प्राप्त है वो ऐसे ही नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी गाथा है त्याग की, तपस्या की। तो हर स्थान ने हमको सिखाया है, जिस जिस स्थान पर हम गए हैं, जो कल राठी जमीन थी उसने तो बहुत ज्यादा सिखाया है। जहां लोग विरोधी थे, हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, सेवा केंद्र के सामने जो बिल्डिंग थी वहां जो भाई रहता था वो ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत ज्यादा विरोधी था। यहां भट्टी चालू थी और भट्टी के बीच में बहन जी ने अनाउंसमेंट किया कि सामने का घर है उसके सामने जो गाड़ी खड़ी है जिसकी भी होगी भट्टी में जो आए थे तुरंत हटाओ, नहीं तो सामने वाला भाई कह रहा है केरोसिन से पूरी कार जला दूंगा अभी के अभी हटाओ। इतना विरोध। एक दूसरा सेवा केंद्र था कहीं बाजू में, कोई डॉक्टर रहता था बहुत विरोधी, वो अपने हॉस्पिटल के सारे यूज किए हुए सिरिंज नीडल सेंटर के सामने डाल के फेंक के चला जाता था, इतना विरोध। तो हर वो स्थान जहां हम गए उस स्थान ने भी हमको बहुत सिखाया है, इसके लिए बलिहारी उस स्थान की भी। चौथा, समय। समय हमारा बहुत बड़ा शिक्षक है। समय जितना सिखाता है और कोई नहीं सिखाता। समय सबसे बड़ा चिकित्सक भी है, बड़े से बड़े घाव जो दिल को लगे हैं कोई भर नहीं सकता, ना तो ज्ञान भरता है कभी, कुछ नहीं भरता, बस उसको छोड़ दो। घाव लगा हुआ है, पट्टी डाल के रख दी है, बार बार पट्टी खोल के देखना नहीं होता है, देखते रहेंगे तो हीलिंग नहीं होगी, छोड़ दो उसको। ब्रह्मा कुमारी जीवन में लगे हुए दिल पर जो जख्म है, चाहे किसी से भी, किसी के भी द्वारा, उनको ठीक करने की विधि है उनको छोड़ दो समय पर। समय उनकी उनकी चिकित्सा करेगा उन घावों की। तो समय ने हमको बहुत सिखाया, और सबसे ज्यादा उस समय ने सिखाया जो कठिन था, बहुत मुश्किल समय था, उस समय ने बहुत ज्यादा सिखाया। जब ऐसा लग रहा था क्या करूं और क्या नहीं, सारे दरवाजे बंद, उस समय ने जितना सिखाया उतना किसी ने नहीं सिखाया। अगला, सेवा। क्या थे हम, इस सेवा ने हमको इतना कुछ सिखा दिया, इतनी बातें पता चल गई जो पहले कभी पता नहीं थी। इसके लिए चाहे अंदर की स्थिति कैसी भी हो, उदास लग रहा है, दुखी लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी सेवा को नहीं छोड़ना। मनोरिंद्रा दादी के पास बहनें आती थी, कहती थी दादी बहुत उदास लग रहा है, दादी कहती थी जाओ जाके कोर्स कराओ, उदास लग रहा है अब दूसरों को ये सिखाओ उमंग उत्साह में कैसे रहे, दुखी लग रहा है दूसरों को समझाओ सुख के, सुखी जीवन का क्या रहस्य है। बोलते बोलते ही अंदर चेकिंग तो होगी ना, मैं सुखी हूं कि नहीं। जो चीज का अभाव लग रहा है वही दूसरों को सिखाना चालू कर देना क्लास में, मुरलियों के बीच में। आलस लग रहा है, मुरली चलाना उमंग उत्साह में कैसे रहना है। अंदर से घुटन महसूस हो रही है, हर्ट हुए हैं, दूसरों को सिखाना सदा खुश कैसे रहे, सदा अचल अडोल स्थिति कैसे बनाई रहे, जो अंदर में है उसी के विरोध में सिखाना मुरलियों के द्वारा। तो सिखाते सिखाते ही क्या होगा, वो उससे मुक्ति हो जाएगी। सेवा हमारा कर्तव्य भी है और प्रायश्चित भी। ब्राह्मण जीवन में जो पाप हुए हैं छोटे मोटे, उसका प्रायश्चित हम कहां करेंगे, बैठ के उपवास करेंगे 4 दिन, कुछ नहीं होगा उससे। पश्चाताप सेवा पश्चाताप भी है। मुरली सुनाना ये ब्रह्मा कुमारी जीवन का कर्तव्य भी है, तो ये मुरली सुनाना पश्चाताप का भी एक सबक है। इसी से हम अपने पश्चाताप कर रहे, जो विकर्म हो गए, अब ज्ञान सुनाकर, अब दूसरों को समझाकर जो मैंने भूल की है वो तुम ना करना। एक सूफी संत ने लिखा है, मैं तुम सबको सिखलाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु इसलिए कि मैंने गलतियां तुमसे ज्यादा की है, इसलिए मैं तुमको सिखा सकता हूं, क्योंकि गलतियां मैंने तुमसे ज्यादा की है। तो सीखना है सबसे पहले परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, स्थान से, समय से और सेवा से। सेवा ने हमको बहुत सिखाया है, वो दूसरे अर्थों में, संदर्भ दूसरा है, वहां यहां संदर्भ दूसरा है। समय को शिक्षक न बनाओ कहा हुआ है, वो दूसरा संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। वहां भाव है कि अभी से वैराग हो, एक समय जब विनाश का आएगा तब वैराग आ जाए, अर्थात समय को शिक्षक बनाया है, वो संदर्भ अलग। मुरलियों के महावाक्य है, समय आगे आगे चल रहा है तुम पीछे पीछे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, समय तुम्हारे आगे आगे जा रहा है तुम पीछे, और समय पीछे मुड़ मुड़ के देख कर कहता है, ए मेरे मालिक कहां तक पहुंचे, क्योंकि समय तुम्हारी रचना है। इसका मतलब तुमने समय को शिक्षक बनाया। समय को शिक्षक बनाना नहीं है, वो अलग, वो फ्यूचर। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पास्ट का, जो समय आया है जीवन में जो बीता, उस समय से सीखना है। तो दोनों ही सही है, संदर्भ अलग अलग है। बाबा की मुरलियों में लहरें हैं। एक मुरली को समझने के लिए, जैसे दादी जानकी के किसी क्लास को समझने के लिए, दादी के इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो पता चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बातें ऊपर से चली जाएगी। वैसे ही मुरलियों को समझने के लिए टाइम प्लेस पर्सन, किस समय वो चलाई गई, कौन से लोग बैठे थे। मुरली में आया तुम्हें गीत संगीत कविताओं से वैराग आना चाहिए, ये गीत संगीत बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें तो आवाज से परे जाना है। हो सकता है सभा में कुछ ऐसे लोग बैठे खाली गीत संगीत ही करते रहते। दूसरी मुरली चलती है, उदास हो जाओ तो तुम्हारे पास अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होने चाहिए, डबल विदेशियों से मुलाकात, उदास हो जाओ तो बाथरूम में जाके डांस करो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। कोई बच्चे कहते हैं हमारा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है, ब्रह्मा से हमको कुछ लेना देना नहीं, ऐसे बच्चों की याद बाप तक नहीं पहुंचेगी। एक दूसरी तरफ इस ब्रह्मा को याद किया तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तो याद एक निराकार को करना है, साकार से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। लहरे है, अपोजिंग पॉइंट्स है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सामने के लोग कौन बैठे उस आधार पर मुरलियां चल रही है। तुम्हें बहुत सेवा करनी है, दिन रात सेवा करनी है। दूसरी तरफ बिना ज्ञान योग की सेवा करने से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। दोनों चीजें उसने ऐसा भी कहा है वैसा भी कहा है, अब वो मेरे लिए कौन सा है वो मुझे ढूंढना है। तो मुरलियों में हजारों चीजें। माउंट में एक मंदिर है लहरी बाबा, शिव का मंदिर, लहरी है वो, उसकी लहरें चलती है, अलग 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 जगह अलग अलग बोल देता है, सामने जैसे है उस हिसाब से मुरलियां चलती है। तो इन पांचों चीजों से सीखते रहना, ये हमारे शिक्षक है। जैसे दत्तात्रेय का उदाहरण आता है, 24 गुरु किए थे, एक स्थान पर गया, एक कन्या थी उसकी शादी होने वाली थी, उसकी माँ बाहर थी, बाहर मेहमान बैठे थे, वो अंदर धान कूट रही थी, उसके हाथों में चूड़ियां थी, आवाज आ रहा था, उसने एक चूड़ी निकाली, सोचा वो मेहमान क्या सोचेंगे अंदर क्या कर रही है कन्या, फिर कूटती है, फिर भी आवाज आता है, एक चूड़िया निकालती, फिर आवाज आता है, एक निकालती, फिर एक एक ही बज जाती है और वो कूटती है, अब आवाज नहीं आता है। दत्तात्रेय करता है, ये कन्या मेरी शिक्षक है, मैंने इससे सीखा कि सन्यासी अकेले ही रहे, दो लोग हो गए मतलब बातें चालू, उसको गुरु बना दी। 24 गुरुओं में एक गुरु वो कन्या है। इस पर भी हमने कभी एक क्लास कराई थी, सारे 24 के 24 गुरु और उन एक एक गुरु का विस्तार। धरती को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, सबको गुरु बना दिया उसने। किस किस को, कितने सारे, वो शिकारी को गुरु बना दिया। वो शिकारी शिकार खेलने में व्यस्त है, एक आदमी जा रहा है पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है, उसका ध्यान ही नहीं, वो अपने शिकार पर है। फिर से पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है, उसका ध्यान ही नहीं। और जब शिकार कर लेता है तब पूछता है तुमने कुछ पूछा। दत्तात्रेय कहता है मैंने इससे सीखा एकाग्रता की शक्ति, हर चीज को गुरु बना देना, हर चीज से सीखते रहना, छोटे से बच्ची से सीखना। एक छोटी ब्रह्मा कुमारी है 15 साल की, अभी सेंटर पर आई है, उससे बहुत सारी चीजें सीखने जैसी है। पता नहीं किस जन्म की क्या क्या तपस्या करके आ गई है। सेकंड बर्थ भी के है, इसी परिवार से गई थी वापस आ गई, उसको हम छोटा ना समझे। क्या क्या उसमें है, उसमें कोई ऐसी खूबियां है, वो संस्कार उसमें है ही नहीं जिसको हमसे 20 साल से हमारे साथ चल रहा है। हमारा संस्कार है रोने का, रूठने का। उसको देखे तो हमेशा खुश रहती, कभी रूठती रूसती नहीं है उसको, कभी कितना भी बोलो। और हम हैं आंसू तो बस यही है, इधर ही रखे हैं, बस किसी के बटन दबाने की जरूरी देरी है, उधर से बटन दबाया कि बस। एक सेवा केंद्र पर गए थे, बड़ी बहन जी कह रही थी हमारी जरा छोटी बहनों से एक बार आप बात करना, थोड़ा उनको कुछ बोलो तो कहती है, धमकी देती हम जारी घर। बात बात पे उनको कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोला कि कहती हम तो जा रही है, हमको नहीं रहना इधर, क्या करें। और कोई कोई है रूठना रूसना, उनको कुछ बोला कि 2 दिन मुंह उधर, नो टॉक, बातें बंद, मौन, उदास, नाराज, ये संस्कार है। हम बात कर रहे थे वो छोटी कन्या है उसमें तो ये संस्कार ही नहीं है, जिस संस्कार से हमारी झगड़ा चालू है। मन के कुरुक्षेत्र में संस्कारों का महाभारत चालू है, मन के कुरुक्षेत्र में संस्कारों का महाभारत चालू है। कोई संस्कार कौरव के है और इधर पांडव, लड़ाई चल रही है, कभी ये जीतता है कभी वो, कभी इधर से कोई हारता है कभी उधर से, और उस बीच में गीता भगवान बैठ सुना रहा है सुबह की क्लास। सिख सिख, दूसरा है झुक झुक, 5 चीजों में झुक जाना है, 5 चीजों को झुकाना है। सबसे पहले अपने अहंकार को, मैं को, मैं राइट हूं, मैंने जो कहा वही होना चाहिए, किससे पूछ के किया, मैं, ये मैं पागल कर देता है। आए थे तो छोटा सा आए था, इंग्लिश में आए कैसा लिखते हैं, आए और ऊपर बिंदु। ब्रह्मा कुमारी जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते कैपिटल आए हो गया, अभी यात्रा रिवर्स करनी है, वापस छोटे आए तक पहुंचना है, और फिर नीचे का जो दंडा है उसको भी हटा देना है, खाली बिंदु रह जाए, छोटा आए बिंदु, जाते जाते बड़ा आए हो गया। अब उल्टी प्रोसेस चालू करनी है कि हम कुछ हो ही नहीं, बिंदु और दंडी, नुक्ता कहते हैं उसको उर्दू में, नुक्ता, नुक्ता चीनी अलग, वो दोष देखना, ये खाली नुक्ता। वो दंडी को भी हटा देना ताकि इस मैं को जो झुकाएगा वही महान है। एक सेवा केंद्र की बहने और भाई, रमेश भाई जी सुनाया करते हमेशा, गवर्नर के पास पहुंचे, सेक्रेटरी के पास, हमारे यहां शिवरात्रि का प्रोग्राम है जरूर आना। उन्होंने कहा बिल्कुल आ जाएंगे हम लोग, कब है बता दो, ये फरवरी को आ जाएंगे। दूसरे दिन दूसरे सेंटर वाले पहुंच गए, हमारे यहाँ शिवरात्रि का प्रोग्राम है, आ जाना। उन्होंने कहा हम आ रहे। उन्होंने कहा कहाँ आ रहे, हम तो आज ही आए। उन्होंने कहा कल ही तो आके गए आप लोग। उन्होंने कहा कौन आके गया? अच्छा, वो सेंटर वाले, वहां मत जाना, वो अच्छे लोग नहीं है, हमारे इधर आना, वहां मत जाना, वो अच्छे लोग नहीं है, उनको क्या पता, वो तो यही समझते हैं ना ब्रह्मा कुमारी से, सेवा कर दी है, डिससर्विस की, डिससर्विस। मैं की लड़ाई चालू है दोनों के बीच। उन्होंने इतना प्रोग्राम किया, हम उससे बड़ा करेंगे कंपटीशन। इस मैं को झुका देना है, इसी में महानता है। दूसरा, अपनी इच्छाओं को झुका देना है। बहुत सारी इच्छाएं, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करूं, वैसा भी करूं, मल्टीटास्किंग। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी, हर सेवा केंद्र की अपनी अपनी सेवा है। अगर एक सेवा केंद्र सोचे हम हर प्रकार की सेवा कर ले, वो ख्याल बहुत अच्छा है, पर मैन पावर, हैंड्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसके लिए, उसके बारे में भी सोचना है, चाहे वो सेवा की या मान शान की इच्छा है, हमारा उसमें नाम होना चाहिए। नहीं है तो हम नहीं आ रहे, जाओ करो सेवा। हमारी बात नहीं मानी, हम नहीं आ रहे, जाओ जो करना है करो, देखते कैसे करते हमारे बिना। तीसरा, अपेक्षाओं को झुकाना है। एक्सपेक्टेशंस, अपने सीनियर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, अपने जूनियर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, वो सम्मान दे। सीनियर्स पूछे पुला के, कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, नहीं पूछा दुखी, बीमार पड़ गए, इच्छाएं है कि हमको पूछा जाए हमारी तबीयत कैसी है, पूछा नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे, तुम बीमार पड़ो। चार दिन से हॉस्पिटल में, अभी तक कोई फोन नहीं आया कैसे हो पूछने के लिए। इतना बुखार चल रहा है, 102 तो हो गई, सिस्टर कहती है गिनू का है मत, कम हुआ तो बोल रहे हैं ना, लग रहा है बस हो गया, इतना गरम गरम लग रहा है। हम इतने बीमार, कोई देखने तक नहीं आया अब तक, हमारा कुछ है कि नहीं। और दूसरा एक ग्रुप है जो ज्यादा दुखी रहता है, कभी बीमारी नहीं पड़ता। लोग कितना बीमार पड़ते हैं, हम कभी बीमारी नहीं पड़ते, हमको भी बीमार पड़ना है। कितनी छाती फूल जाती है जब ऐसी सलाइन चलती है, तो सलाइन की एक एक बूंद के साथ कितनी खुशी होती है, कितने लोग मिलने आते हैं, पूछते हैं आप कैसे हैं, हम कहते हैं कल से आज थोड़ा ठीक है, पर पूरा ठीक नहीं है। वैसे तो कोई पूछता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, बीमारी में कम से कम पूछते हैं लोग, इतना अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी बीमारी, हमको कोई बीमारी नहीं, कौन क्या करे, हमको भी कोई अच्छी अच्छी खासी अच्छी तगड़ी सी बीमारी, हम भी थोड़ा एडमिट हो जाए, लोग पूछे, और डिस्चार्ज होने के बाद फिर एक हफ्ते के बाद पूछे आप कैसे, आप कहेंगे बाकी ठीक है, बाकी कमजोरी है अभी बहुत, डॉक्टर ने 1-15 दिन आराम के लिए बोला है। बेचारा है, एक सेवाधारी भाई था, शांति सेवाधारी भाई था शांतिवन, उसको बहुत कुछ बीमारी हो गई, कई बार इंचार्ज से कहा मुझे छुट्टी दो मैं दिखाता हूँ, नहीं दी गई छुट्टी। और एक बार रविवार था, बेचारा कोई सेवा, उसको सेवा में कोई नहीं, अकेला बेचारा, बड़ी मुश्किल से वो सरकारी बस ली आबू रोड तक आया, वहाँ से पैदल हॉस्पिटल पहुँचा, हॉस्पिटल बंद, और उसको दिखाना था, तो बहुत उदास और बहुत दुखी हो गया। और कोई होम्योपैथी या कोई ऐसे डॉक्टर उसको मिल गया चलते चलते, उसने ऐसे ही चलते चलते दवाई लिख दी और उसने ले ली और वो ठीक भी हो गया, अपने आप उसको मदद मिली। दो पेशेंट एक साथ एडमिट हुए, पहला वीआईपी, एक सो कॉल्ड वीआईपी, उसके साथ पांच लोग आते हैं और फिर वो कहते क्या हुआ, बीमार है, क्या तकलीफ है, बुखार, टेम्परेचर नॉर्मल, कब से है, 10 दिन से, कोई ब्लड टेस्ट सब कुछ किया हुआ है, सब नॉर्मल। तो वो कहते मैं कहता हूँ डॉक्टर दवाई लिख देता हूँ, वो कहते नहीं भर्ती करो भर्ती, ठीक भर्ती कर दे। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी पांडव भवन की माता आती है, एक ऐसे से कर रही है, क्या हुआ, ठीक है ऐसे ही थोड़ी ठंड लग रही है, टेम्परेचर 104 डिग्री बुखार, हम कहते हैं अभी के अभी भर्ती हो जाओ, वो कहती नहीं भर्ती हो नहीं सकती, बाबा की सेवा में आई हूं, बोझ होगा। हम कहते भर्ती होना पड़ेगा, वो कहती नहीं नहीं मैं भर्ती नहीं होंगी, जबरदस्ती, वो कहती मेरे पास पैसे नहीं है, बस अभी 125 रुपए है वो जाने की टिकट है कॉमन बोगी के, उतने ही पैसे है, आने के पैसे और जाने के पैसे, घर में सारे विरोधी है, कोई पैसे नहीं है, मैं खर्चा नहीं कर सकती हॉस्पिटल का, और बाबा के इधर सेवा में आई हूँ या भर्ती हो जाओ बोझ नहीं। हम कहते भर्ती होना पड़ेगा, जबरदस्ती भर्ती किया जनरल वार्ड में, पहला वाला भाई प्राइवेट वार्ड में, फिर शाम को मिलने जाते हैं प्राइवेट वाले वार्ड में, बहुत सारे मित्र संबंधी, टीवी चालू है, गुलदस्ते हैं, जाने के बाद कहते हैं, हम कहते हैं रिपोर्ट सारे कैसे है डॉक्टर साहब, हम कहते हैं सारे रिपोर्ट नॉर्मल, वो कहते हैं हमारा एक सोनोग्राफी करा दो आप कल, हमने कहा ठीक है, और दूसरी बात यह हीटर काम नहीं कर रहा है, इसको जरा देखना, वैसे हमारी बात हो गई है ऊपर पर आप भी देख लो, उनका ठीक है। फिर माता को मिलने जाते, जनरल वार्ड में है बेचारी, थर 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 कांप रही है, यहाँ वाले टीवी देख रहे हैं, थर थर कांप रही है, हाथ में मुरली है, अभी बुखार कम हुआ है 102, रिपोर्ट सब गड़बड़ है, वो कहती है कल मुझे छुट्टी चाहिए, मैं यहाँ बाबा की सेवा के लिए आई हूँ, यहाँ रुकने नहीं आई हूँ। हम कहते देखेंगे, सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। दूसरे दिन सोनोग्राफी ऊपर की नॉर्मल, इधर की गड़बड़, ऊपर वाले को कहते हैं अभी छुट्टी कर सकते हैं, नहीं नहीं अभी वीकनेस कितनी है और 4-5 दिन रहने दो इनको। नीचे वाली कहती है कि मुझे आज जाना है, और तीसरे दिन तो वो चली जाती है, बाद में कभी नहीं आई वापस, बाबा देख लेगा मुझे। ऊपर वाले सारा टेस्ट नॉर्मल सब कुछ, 15 दिन के बाद अहमदाबाद में जाके वापस सारी चेकिंग करके आया है, सब नॉर्मल, पर वीकनेस तो अभी भी है। और नीचे वाली माता कभी दिखी नहीं बाद में, कौन किसको मदद कर रहा है, गुप्त मदद बाबा की आती है अपने आप, जब कोई साथ नहीं दे, नीचे वाली को मिलने के लिए कोई नहीं है, वहां हीटर वो मांगती भी नहीं कि मुझे ठंड लगती है हीटर लाओ या कुछ दो, अपेक्षाएं, किससे अपेक्षाएं रखे, हर एक अपने दुख में डूबा है, बड़ो छोटे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। शांतिवन में एक भाई एवर हेल्दी में एडमिट हो गया, अपने साथी से कहा, उसने कहा कुछ चाहिए, उसने कहा थोड़ी खिचड़ी ला दो, सुबह गया शाम तक आया ही नहीं, इंतजार ही करते रहे अब आएगा अब आएगा अब आएगा, कोई आया ही नहीं पूछने न बताने। और ऐसे समय में भगवान की मदद का सबसे ज्यादा अनुभव होगा, जब सब ने साथ छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं पानी दू क्या चाय दू क्या, बिस्तर में पड़े हैं, एक ही कमरे में दो लोग हैं, दूसरा पूछता तक नहीं, झटक दिया है जैसे मक्खी निकाल दी और फेंक दिया, तब ज्यादा मदद का अनुभव होगा भगवान का। अच्छा हुआ वो परिस्थिति आई, पता तो चला कौन अपने हैं और कौन पराए, तो झुक जाना, झुकाना है किसको, अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना है, किसी से क्या अपेक्षा करना, सारी अपेक्षा एक बाप से करो बस। चौथा अपनी ओपिनियन, ये मेरा मत है ऐसा होना चाहिए, प्रोग्राम करने जा रहे हम कहते हैं वो हॉल में होना चाहिए, बाकी कहते वो हॉल में, हम कहते नहीं ये मेरा मत है, इधर ही होना चाहिए, नहीं करते जहां हम नहीं आएंगे उस प्रोग्राम में। बालक और मालिक मीटिंग हो तो ये सिद्धांत बाबा ने बताया, मालिक बनकर अपनी पॉइंट रखो, पर जब फाइनल हो जाए सबका उसको बालक बन के स्वीकार कर लो। हमने कहा कि ये प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, सबने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब फाइनल हो जाए तो स्वीकार कर लो, और अपने वो जो हमने जो पकड़ के रखा था ठीक है छोड़ दो उसको। चौथा पांचवा, अपने प्रश्नों को झुकाना है, संशय वाले जो सारे प्रश्न भर रखे हैं बुद्धि में, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, यहां पर भी ऐसा होता है, मधुबन में ऐसा होता है, ये भाई ऐसे करते, इस डिपार्टमेंट में भी ये होता है, सेंटरों पर ऐसा होता है, लौकिक में तो बहुत अच्छी स्थिति थी, जब से सेंटर में आए स्थिति खराब हो गई, ये अधिकांश का प्रश्न है, खराब या नहीं हुई है, यहां तो पता चला क्या स्थिति थी, वहां परिस्थिति आई कुछ नहीं थी तो काहे की स्थिति, वहां बहुत अच्छे थे यहां ठीक नहीं है, उससे तो अच्छी वो कन्या है जो नौकरी करती है, सेंटर पर आती है बीच में रहती है चली जाती है, अरे पर वो यहां रहने के मार्क्स ज्यादा है, ये ज्वाला का भवन है, लिखा है तेरे भाग में रहेगी, तेरे भाग में सदा, तेरा जीवन सदा आग में रहेगा, ब्रह्मा कुमारी जीवन से बड़ा इस संसार में और कोई जीवन नहीं है, ना कोई पदवी है ना कोई पोस्ट है, अग्निपथ है। तो ये सारे संशय वाले प्रश्न, हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, बाबा को कोई परवाह नहीं है क्या, बाबा देखता नहीं है क्या, ये अन्याय क्यों, ये अत्याचार क्यों, इस ड्रामा में कोई अन्याय नहीं है, ये ड्रामा न्यायकारी है, हर एक के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए, किसी को सब मिल रहा है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, वैसा ही है, क्योंकि जन्म जन्म के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या विकर्म पाप कर रखे इतने जन्मों में, इसलिए तो चुकतू ऐसे हो रहा है। ये पांच चीजें चुकाना है। तीसरा मरमर, पांच चीजों से मर जाना है। पहला देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, एक ही है तीनों, परिभाषा है तीनों की अलग अलग है, दादी जानकी की क्लासेस में सुन सकते हैं, हर जगह दादी ने अलग अलग बातें बताई है इसकी। ये जो अहंकार है, रोना भी एक देहभान का स्वरूप है, रोते रहते हैं छोटी छोटी बातों में, दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके कमरे में। एक बहन आई थी, हमने कहा क्या तकलीफ है, उसने कहा रोना आता है, हमने कहा कितनी बार, उसने कहा 33 टाइम्स पर डे, हमने कहा आपने गिन के रखा, बोली हाँ मिनिमम तो है, सुबह से लेके शाम तक इतनी बार रोना आता है, क्यों, कोई कुछ बोलता है तो रोना, स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया रोना, कोई पुरानी बात याद आ गई रोना, मम्मी की याद आ गई रोना, मम्मी को तो अभी तक भूली नहीं है, मम्मी के हाथ का खाना, आहा वो दाल बाटी, दाल रोटी अब भी याद है, मोह मोह के धागे। ब्रह्मा कुमारी जीवन के तीन नियम है, कट द ब्रिज, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर। पहला है कट द ब्रिज, अर्थात पुल को काट दो, सेना का नियम है, इस ओर से उस ओर जाना है, बीच में खाई है, पुल बांधते हैं, उधर जाने के बाद इसको काट देते ताकि वापस आने का कोई सवाल ना हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आगे कट कर दो, कट द ब्रिज। दूसरा थ्रो द लैडर, सीढ़िया, इस सीढ़ी से वो चढ़कर ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने के बाद अब सीढ़ी फेंक दो, वापस नीचे आने का कोई काम नहीं। तीसरा ड्राउन द बोट, उस किनारे से इस किनारे, उस नाव के सहारे आए थे, इस किनारे आने के बाद उस नाव को डुबो दो ताकि वापस जाने का कोई सवाल नहीं, उस दुनिया को छोड़ के आए, उस लौकिक संबंध को छोड़ के आए, अब वहां का मेरा भाई, लौकिक भाई दारू पीना चालू कर दिया, तुमको क्या करना है, मेरे पिताजी की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, उधर किसको बीमारी है, उधर बीमारी, इधर हलचल, उधर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, इधर इसकी तबीयत ठीक नहीं। तोड़ निभाना है, पर तोड़ निभाने के नाम पर अपने मोह का पोषण कर रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रांग वाक्य है, तोड़ निभाना, तोड़ निभाना, और अंदर मोह का पोषण हो रहा है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन इतनी पश्चाताप कर रही थी, इतनी दुखी थी, क्यों किसी को बता नहीं सकती, पाप कर लिया एक, कौन सा पाप, सेंट इंचार्ज को भी नहीं बता सकती, ऐसा पाप हो गया क्या? घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, सेंटर की जो भंडारी थी उसमें से सारा पैसा महीना महीना में घर घर पे भेजती रही, और अब जो पैसा भेजा वो भी उधर काम नहीं आया, अब हाथ में पश्चाताप है, बता भी नहीं सकती किसको। ऐसे ऐसे फोन आते मरमर, अर्थात पहला मरना है देहभान, देहाभिमान, देहांकार, अपने वो सूक्ष्म संस्कार की खोज करनी है जो दुखी करते हैं, रोना उसमें टॉप मोस्ट है, रूठना रूसना है उसमें, मूड ऑफ मूड ऑन, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ मूड ऑन होते रहता है। अच्छा सब कुछ कहा बहन जी ने, अच्छा कहा तो अच्छा लगता है, कुछ शिक्षा दे दी कि तुरंत लगता है जैसे ये तो शत्रु है, जानबूझ के हमसे ऐसा किया, पक्षपात है, पॉलिटिक्स है। एक अव्यक्तवाणी है, डेट हमें याद नहीं है, पूरी निमित्त आत्मा के ऊपर है। तुम समझते हो कि उस निमित्त आत्मा ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, पर बाप तुमसे पूछते उसे निमित्त बनाया किसने? क्या बाप बुद्धू है जो उसको निमित्त बनाया, और उसके द्वारा जो डायरेक्शंस आ रहे ये समझो बाप के द्वारा आ रहे, उसी में कल्याण छिपा है। ऊपर से अकल्याणकारी दिखाई दे रहे, अन्याय दिखाई दे रहा है, उसी में सूक्ष्म कल्याण है। दूसरा जिससे मर जाना है वो है देह के संबंध, मर चुका है वो दुनिया जिससे आए थे, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, कट द ब्रिज, कोई संबंध नहीं, वो वहां दुखी है, अब उनका पार्ट है, हम क्या कर सकते हैं, सकाश दे यहां से बस, 10 बार फोन, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर की हलचल और इधर हलचल, सारे संबंधी मर चुके हैं, कफन पहना है ना, मर गए वो सारे लोग, कोई मतलब नहीं है किसी से। पुष्पा शांता, पुष्पा रानी दीदी थी नागपुर, अभी अभी शरीर छोड़ा, जब से ज्ञान में आई एक बार भी लौकिक घर में नहीं गई आखिरी तक, घर जाना है, इसको घर नहीं समझा, मतलब अभी तक वो घर खींचता है, यही सब कुछ है। मधुबन में ऐसे एक दो भाई है जिन्होंने आज तक ज्ञान सरोवर भी नहीं देखा है, 30 साल से रह रहे, इंटरेस्ट ही नहीं है कहीं जाने का, कहते यहां से डेड बॉडी जाएगी, सेंटर पर आए डेड बॉडी जाएगी, अब यहां से वापस कोई घर है ही नहीं, वो घर छोड़ चुके हैं, कोई मतलब नहीं, ना तो कोई माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई, तू जल जल रे किरने फैला, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, जलना पड़ेगा तो ही विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे, हीरा तभी बनेंगे जब जलेंगे, ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, जाते रहो संसार में 10 बार। स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक भाई था जो बार बार लौकिक घर जाता था, कभी माँ से मिलने, कभी बहन से मिलने, कभी किसका कुशल क्षेम, कभी उसका कुशल क्षेम। उन्होंने कहा, आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हु आर हाफ हॉर्स सोल्डर्स एंड हाफ मंक्स, आउट। मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए जो आधे सन्यासी और आधे गृहस्थी है। अगर उधर जाना है ना, जाओ वहां से, आउट, यहां नहीं आना वापस, हमेशा के लिए हट जाओ यहां से। ये सन्यासियों का आश्रम है, वैरागियों का आश्रम है, धधकती वैराग की अग्नि है यहां। लौकिक जा रहे हो, जाओ हमेशा के लिए, वापस मत आना इधर, भाग जाओ यहां से। जीसस क्राइस्ट कहता है, ही हु लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही हु लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। जो अपने लौकिक मां बाप को मुझसे अधिक प्रेम करता है, मेरे लायक ही नहीं है, चले जाओ यहां से। जो अपने लौकिक भाई और बहन को मेरे से अधिक प्रेम करता है, वो मेरे लायक नहीं है, मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करो। भगवान भी यही कहता है। संबंधी तीसरा, देह के संस्कार, मर जाना है देह के इन संस्कारों से, जो लौकिक के संस्कार थे, टिप टॉप रहूं, ये करूं वो करूं, श्रृंगार साज सज्जा, ये सारे। चौथा, देह की इच्छाएं या देह के भोग, तपाना है, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात तपस्या है, तपकुंड है, सेवा केंद्र, केवल सेवा केंद्र, सेवा केंद्र नहीं है, सेवा का केंद्र नहीं है, वो तपस्या का केंद्र है, अग्निकुंड है, ज्वाला का भवन है, इसमें स्वयं को तपाना है। ये जीवन भोग विलास के लिए ना ही हमारे, ना ही किसी और के, देह की इच्छाएं और देह के भोग। और लास्ट पांचवा, देह के धर्म। एक है स्थूल धर्म, स्थूल धर्म कौन से, हिंदू मुस्लिम, और देह के कुछ दूसरे भी धर्म है, भूख प्यास और निद्रा, इन तीन चीजों को जीतना, ये देह के धर्मों को जीतना है। अपनी ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात बस खाऊं खाऊं और म्याऊं म्याऊं नहीं है, आज क्या खाऊं, सुबह ये बनाया, दोपहर में क्या खाऊं, रात में क्या खाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, किस किस को खाऊं, ये बनाया वो बनाना है, आधा जीवन तो सारा किचन में गुजर रहा है। स्वामी विवेकानंद को पूछा, अमेरिका में तुम्हारे देश के धर्म का क्या हुआ, उन्होंने कहा मेरा देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है, जहां पर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड, दिन रात लोग भोजन का ही सोचते रहते हैं, कहां से धर्म करेंगे, चूल्हे चौके में जाके मेरे देश का धर्म भस्म हो गया है, इससे ऊपर उठना है धीरे धीरे। निद्रा चीत जागती चोत, तो ये पांच चीजों से मरमर, पांच चीजों से झुक झुक, और पांच चीजों से सिक सिक। भक्ति मार्ग में थी शोक वाटिका, सतयुग में होगी अशोक वाटिका, और ब्रह्मा कुमारी जीवन में छोक वाटिका ना बन जाए, जिसमें हर चीज को छोक लगाते हैं। दाल वैसी नहीं चाहिए, छोक लगाओ उसको, सफेद चावल नहीं चाहिए, छोक लगा के उसको रंगी बिरंगी बना दो, छोक वाटिका इधर है, ना तो शोक वाटिका ना अशोक वाटिका, नई वाटिका तैयार की है इधर, छोक लगाने की वाटिका। 56 प्रकार के भोग हो या सूखी रोटी हो, वही आनंद आना चाहिए फिर, चाहे उसमें नमक हो या ना हो, वही आनंद आना चाहिए, इतना स्वाद से परे। ये तपस्या है। सूरज रे जलते रहना, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सूरज रे जलते रहना, वो सूरज मैं हूं, जल जल के तू किरणें फैला, यही है तेरे भाग में। ओम शांति।
जगत भर की रोश रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना सूरज रे जलते जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए तू जल जल के यहाँ किरने लुटा रे लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में सूरज रे